مشکل الفاظ کی وضاحت. الحمد کیا مادہ ہے اس کا؟ حامیم دال. اس کے معنی کتنے ہیں؟ دو معنی ہیں. تعریف حمد کے لیے بھی آتا ہے اور شکر کے لیے بھی آتا ہے. ایواجا عین واو جیم, اور یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے کسی قسم کی کجی اور ایک طرف جھکنے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اواجا, اگر عین کے اوپر فتح ہو زبر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا ٹیڑھ پن جو آنکھوں سے نظر آئے. اواجا کہ کوئی چیز ٹیڑھی ہے نا, آپ کو آنکھوں سے نظر آئے. مثلا دیوار ٹیڑھی ہے, لکڑی ٹیڑھی ہے, وہ چیز ٹیڑھی ہے لیکن آپ کو آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے. اور اگر اواجا آئے نا عین کے نیچے زیر آئے تو یہ ایسا ٹیڑھ پن ہے جو آپ کو آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا لیکن بصیرت, اہل بصیرت یعنی دل سے مانوی لحاظ سے کسی چیز کا ٹیڑھ پن ہونا. مثلا کوئی دین کے اندر ٹیڑھ پن اختیار کر لے, ہے نا, اپنے نظریات میں, اپنے عقائد میں, تو عام آدمی کو تو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس نے اس کے اندر ٹیڑھ ہے. جیسے کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ اسی بات کا انکار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر نہیں تھے, عبد نہیں تھے بلکہ نور تھے, تو یہ بھی ایک ایوج ہے, یہ بھی ایک ٹیڑھ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے قیمن, کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ کاف واو میم, قوم سے ہے. اور کھڑی, کیونکہ بہت سے لوگ جب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بات کے لیے, کسی نظریے کے لیے, اس کو قوم کہتے ہیں, ہے نا. اسی طرح تو قیم درست رکھنے والا, معتدل جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو, بیلنس, اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. باسن با حمزہ سین, آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, یہ لفظ جو ہے بھوک کے لیے بھی آتا ہے, جنگ کے لیے بھی آتا ہے, برائی کے لیے بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے یہ عذاب کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے یہ آیت نمبر 3 ہے, اور اس میں لفظ ہے ما کے سینا, یہ آپ پڑھ چکی ہیں پہلے بھی, میم کا سا, سین ہے کہ سا ہے؟ سا ہے, شابش. اور کیا معنی ہے اس کے؟ ٹھہرنا. کس لیے ٹھہرنا؟ شابش, کسی کے انتظار میں ٹھہرنا. کبھی یوں ہی ٹھہرتے ہیں نا, لیکن یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے کسی کے انتظار میں ٹھہرنا. آیت نمبر 4 میں ہے یونزرا, نون زال را, کیا معنی ہے اس کے؟ ڈرانا, ڈرانا, اور کسی کو محبت اور پیار سے ڈرانا. ایک ڈاکو ڈراتا ہے نا چھری اور اپنا بندوق دکھا کر, وہ نہیں, بلکہ کسی کو محبت اور پیار سے ڈرانا, اس کے انجام کا اس کو احساس دلا کر. پھر آپ دیکھیے یہ لفظ ہے آیت نمبر 5 میں لیا با اہم, کیا مادہ ہے اس کا؟ حمزہ با واو ابو, اور ابن ایک کو کہتے ہیں, اور ابا ابا اجداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کابورت کاف با را, بالکل ٹھیک ہے. اور کاف با را جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ بڑائی کے لیے, یہ کسی کا بڑا ہونا, اسی سے اکبر بہت بڑا سپرلیٹیو ڈگری ہے. اور یہاں پہ بھی کبورت سخت سزا کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بڑی ہی عجیب بات ہے, یعنی جیسے بہت بڑی بات کے لیے جو ہے وہ اس کو کبورت, تو معنی کبیر سے ہی ہے بڑے کے معنی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم لفظ ہے, اور آپ پہلے بھی اس کو آپ پڑھ چکی ہیں, اور یہ ہے افواہہم, افواہہم, اور کیا ہے اس کا مادہ؟ تو اس کا مادہ ہے فا و ہا, اسی سے افواہ तो फमुन भी कहते हैं, फमुन मुंह के लिए आता है, तो अफवाह बहुत से मुंह से निकली हुई बात। तो फा वा हा जो है ये इसका रूप गण है। फला अल्ला
जमा
का, हाँ लाल्ला होता है ना, यही है लाल्ला, शायद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ लाल्ला जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, शायद के लिए आमतौर पे, जैसे हाँ असा भी आता है, लाल्ला भी आता है। फिर है बाखेउन, बाखेउन जो है बाखा आइन, और इसके मानी है हिलाक होना या हिलाक करना। अब देखें कि हिलाक के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, बाखेउन। और बाखा आइन गम या गुस्से से अपने आप को हिलाक कर देना, घुल घुल कर हिलकान हो जाना। गम या गुस्से से अपने आप को हिलाक कर देना, क्योंकि किसी के भी हिलाक होने की मुख्तलिफ वजूहात जो है वो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो वजह इस्तेमाल की गई है वो क्या है, बाकी उन नफ्सा का, कि गम की वजह से आप अपने आप को हिलाक कर लेंगे या फिर गुस्से की वजह से आप अपने आप को जो है वो हिलाक कर लेंगे। फिर इसके बाद है आसार। हाँ तो आसार लफ्ज जो है ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि अलिफ सा रा जो है ये कदम और निशानी को भी कहते हैं, और इसके साथ ही ये लफ्ज जो है वो तरजीह देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फिर अगला लफ्ज है असाफा। तो असाफा क्या है इसका रूपवर्ड, तो हमजा सीन फा, और ये लफ्ज जो है ये अफसोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैसा अफसोस, जैसे किसी के अंदर अफसोस और गम के जब मिले जुले जज्बात जमा हो जाएं तो उस वक्त इंसान को अफसोस होता है। और ये भी हो सकता है कि बाज लोग ये कहते हैं कि जैसे अपने अजीज के किसी रवैये की वजह से अफसोस, जैसे आपने पीछे सूरत यूसुफ में भी पढ़ा, वकाल या असफा अला यूसुफा वबयदत ऐनाहु मिनल हुज्नि फहुवा कज़ीम, है ना, तो आपने वहां भी पढ़ा था। तो बहरहाल कहते हैं कि गुस्सा जब किसी कमजोर शख्स पर आए तो गजब की शक्ल इख्तियार करता है, और जब अपने से ताकतवर पर गुस्सा आए तो इंसान फिर अपने ही अंदर जो है ना वो कुड़ता रहता है, और फिर उसके अंदर एक हुज्न व मिलाल की और अफसोस की जो कैफियत पैदा हो जाती है उसको असफा कहते हैं। कि ताकतवर पर जब आया तो क्या है कि आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो अफसोस की कैफियत पैदा हो जाती है, तो उसके लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे अफसोस और गम को कहते हैं जो जहां इंसान का बस भी ना चल सकता हो, आम नहीं बल्कि खास। फिर है जीनतन,
जीनतन
क्या रूपट है, जायानून, किसी को मुजयन करना, ब्यूटीफाई करना, प्योरीफाई करना। फिर है लिनब्लुवाहुम, बालम व और बालम या, और इसके मतलब है कि क्या मानिए इसके, ये लफ्ज जो है ये जांच परख पड़ताल किसी चीज को खोट बजा कर देखना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सोने को जब भट्टी में पकाया जाता है तो उसके लिए भी आता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो है उसके अंदर खरा खोटा जो है ना उसका वो वाजे होता है। इसी तरह कपड़ा अगर पुराना हो जाए तो उसके लिए भी, कि वो आजमाइश में से गुजर कर पुराना हो गया। इसी तरह बलोनी, आपने सुना होगा बलोनी भी इसी से है कि दही में जब बलोनी डाली जाती है तो दही की आजमाइश होती है, कैसे होती है, खूब उसके अंदर वो चलती है, फिर मक्खन अलग हो जाता है और लस्सी अलग हो जाती है। तो बलोनी या ये लफ्ज जो है वो इस आजमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सईदन, स्वाद आयन दाल, और स्वाद ऐन दाल का जो लफ्ज है ये साफ मैदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा मैदान जो बिल्कुल ही जो है वो साफ हो, जैसे चटियल जिसके अंदर कोई भी चीज आपको जो है वो नजर नहीं आती। और अब आप देखें कि पहले ही सईदन जो है वो साफ मैदान के लिए है, लेकिन साथ में जुरुस भी आ गया, और जुरुस के मानी क्या है, बिल्कुल हमवार जिसमें कोई दरख्त ना हो। और जुरुस लफ्ज जो है ये ऐसे मैदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे काट कर खाली कर दिया जाए। और इसी तरह जैसे किसी चीज को काट कर खाली कर देना या खा कर खत्म कर देना, जैसे मसलन आपके आप दस्तरखान पर बहुत सी खाने की चीजें लगाती हैं और फिर खा कर उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, मैदान साफ हो जाता है, दस्तरखान साफ हो जाता है ना। हमारी प्लेट जो है आप दावतों पे जाती हैं तो आप देखें कि हमारी प्लेट पर भी कितने माउंटेन बन जाते हैं, है ना, मुख्तलिफ, लेकिन उसके बाद फिर उसको साफ कर देते हैं, हम चट कर जाते हैं। तो किसी चीज को खा कर खत्म कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए बिल्कुल, या फिर ये कि किसी मैदान को काट कर साफ कर दिया जाए, तो दोनों तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, वो है अम, और अम जो है आप देखें कि अम लफ्ज जो है ये या के मानी भी देता है ना, और अगर के मानी भी देता है, या अगर हसिबता हा सीन बा, तो हा सीन बा के मानी क्या होते हैं, गुमान करना, हिसाब करना। फिर है अलकहफ, अलकहफ वसी गार को कहते हैं, और गार का लफ्ज जो है वो तंग गार के लिए इस्तेमाल होता है, तंग खो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रकीम, रा काफ मीम, ये लफ्ज जो है वो रकम से है, और रकम जो है इसके मानी क्या होते हैं, हाँ लिखना, लिखी हुई चीज के लिए हमारे यहाँ जो है वो रकम लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख लें कि जो है वो जो लोग थे असाबे कहफ वाले, तो बाज लोगों का ये ख्याल है क्योंकि उनका नाम जो था वो एक तख्ती पे रकम था, तो इसलिए जो है इनको यहाँ पे जो है वो रकीम कह के मुखातिब किया गया। और बाज लोगों का ये ख्याल है कि ये जो रा काफ मीम है ये दरअसल वो तीन लोग थे जो के जिन्होंने जो है वो बारिश और तूफान की वजह से जो थे वो एक गार के अंदर छुप गए थे, तो बाज लोगों का ये भी ख्याल है। तो बहरहाल रकीम का लफ्ज जो है वो रकम से है, और आप उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए कि हमने ये चीज जो रकम कर दी, हमने इस बात को जो है वो लिख दिया, रकम कर दिया। फिर इसके बाद जो है आप देखें तो अगला अहम लफ्ज जो है वो है इज अवल फितियातु, है ना, तो अवा जो है इसका रूट वर्ड जो है वो क्या है, हमजा वो, या आप पहले ही पढ़ चुकी हैं, तो इसके मानी क्या है, पना लेना। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्या कहा था, किस्सा आवी, कि मैं पना ले लूंगा इस पहाड़ की तरफ, मावा इसका मशहूर लफ्ज जो है वो मावा भी है, और इसके मानी क्या होते हैं मावा के, हाँ यानी ठिकाना। और जहन्नुम के लिए अल्लाह ने ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है कि जहन्नुम जो है वो ठिकाना है नाफरमानों का। फिर आगे है फितियातु, फाता वो, और इससे मुराद क्या है, नौजवान। तो फितियतुन फता की जमा है, और इससे मुराद जो है कौन लोग हैं, नौजवान लोग इससे जो है वो मुराद हैं, और नौजवान जो हैं कौन नौजवान, जो अकल के एतबार से भी और समझ के एतबार से भी जो है वो भरपूर होते हैं। और आप देखें कि नौजवानी ही में तो इंसान की अकल और समझ जो है वो भरपूर हो जाती है। फिर इसके बाद आप देखिए तो लदुन का आया है ना, तो ये का तो आपको पता ही है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है, मतलब के कहना चाहिए रब्बाना आतिना मिन लदुन का, तो का यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए आया है कि वो जो असहाबे कहफ थे वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला तू अपने पास से, लदुन लदुन का मतलब है जैसे खास, एक एहतमाम से खास अपने पास से हमें जो है वो दे दे। वही, और वही जो है ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसका रूट वर्ड है हा या और हमजा। हैयत शक्लो सूरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और हैया मुहैया करना उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और हैयत तो आप भी बोलती है ना उर्दू में, उसकी हैयत कैसी है, शक्लो सूरत कैसी है, तो यहाँ पे है ये दुरुस्त कर, मुहैया कर, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फिर है रशादा, तो हदायत और इस्तकामत, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और आपको ये बात बताई थी कि जो हदायत है इसके दो दर्जे हैं, है ना, एक है हदायत और दूसरा है रुश्द। हदायत क्या होता है कि सीधे रास्ते पे चल पड़ना, और रशदा होता है कि सीधी राह इख्तियार करने के बाद नेक आदतें तौर तरीके जो है उनको अपनाना और उन पर बरकरार रहना। आपको समझ आई दोनों की फर्क? हदायत तो ये है कि सीधा रास्ता है उस पर आपने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन रुश्द क्या है, ये हदायत का अगला दर्जा है कि जो सीधा रास्ते पे आप चले तो सीधी रास्ता इख्तियार करने के बाद जो नेक आदतें तौर तरीके अपनाने चाहिए इंसान को, उसको अपना ले इंसान और फिर उस पर बरकरार रहे, तो इसको रुश्द कहा जाता है ना, रुश्द। और इससे फिर क्या बात पता चलती है, जैसे आपने पीछे सूरतों में भी पढ़ा अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, कि क्या तुम में रजुलुर रशीद कोई नहीं है, कोई नेक चलन नेक आदत अतवार वाला आदमी कोई नहीं है, जैसे पैगंबर ने कौम के लोगों से पूछा कि तुम जो ये बुराई कर रहे हो तो तुम में कोई रजुलुर रशीद नहीं है, तो राशिदा रुश्द रशीद ये इसी की फैमिली के जो है वो अल्फाज हैं। फिर आप देखें फदरबना, द्वादरा बा जो है आमतौर पे इसके मानी क्या होते हैं, मारना, और यहाँ पे थपकी के मानी में है कि पस हमने दी थपकी अला आजानहिम इनके कानों पर। उजुन किसे कहते हैं, कान को कहते हैं, इसकी फैमिली का कोई लफ्ज बताएं, आजान है ना, इज्न भी इसी से, इजाजत दीजिए, तो कान कोई सुनता है कानों से और फिर बोलता है इजाजत देता है ना, तो इसी से उज्न इज्न अजान। और कोई इसकी फैमिली का बताएं, मुअज्जन शाबाश अजान देने वाला। सिनीना, हाँ, आप देखें कि सिनीन लफ्ज जो है ये आप पहले भी जो है वो पढ़ चुकी हैं, और इसकी फैमिली जो है हाँ, इसका 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 रूट वर्ड क्या है, इसका है सीन नून वो और सीन नून या, सीन नून वो और सीन नून या, ये साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सीन नून ता जो है ना तसन्ना खराब होना के लिए है, तसन्ना खराब होना के लिए है, और सीन नून वो या सीन नून या, और इनका वाहिद क्या होता है, सनातुन है ना, और सिनीन इसकी क्या है, जमा है। फिर आप देखिए कि आहसा गिनना, तो गिनने के लिए जो है वो आप पहले भी इसको पढ़ चुकी हैं कि इस गिनने में, और जैसे हसेबा भी तो हिसाब करना है ना, तो अल्लाह ताला ने हसेबा की बजाय यहाँ पे गिन्ना लफ्ज जो है वो क्यों इस्तेमाल किया, है ना? तो मैंने इसकी पहले भी वजाहत की थी, याद है किसी को इससे मुराद फिर क्या है? हाँ, पत्थर पत्थर गिरा कर गिनना। अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि कोई मामला जो उनके पास बहुत अहम होता ना, तो एक एक किंकरी फेंकते जाते और उसके साथ साथ उसको गिनते जाते। तो क्योंकि वो हिसाबदान तो थे नहीं, तो सीधे साधे से लोग थे, तो किंकरियों पर शुमार करते थे, किंकरियां गिरा कर गिनते थे। तो असल में अरबी जबान में हा स्वाद अलिफ हसा किंकरी को कहते हैं, कहते ही किंकर को है, पत्थर को है। तो हसा जो है मानी क्या है? किंकर मारना। तो आसा किंकरी मार कर गिनना। तो इस तरह ये लफ्ज जो है वो शुमार करने में जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। तो हसा के अंदर दो बातें पाई जाती हैं, नंबर वन गिनना और नंबर दो उसका रिकॉर्ड रखना, याद रखना। क्योंकि आप देखें कि अदद भी तो गिनना होता है ना। आपने भी ये इसी आयत में पढ़ा, आयत 11 में, फदरबना अला आजानहिम फिल काफी सिनीन अदादा। तो ये आम गिनना होता है, मारूफ है, आम इसका इस्तेमाल है कि गिनना, अदद गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हिंसा गिनती। दूसरा है हसाबा, वो भी आपने यहां पढ़ा, आपने अम हसिबता बिल्कुल स्टार्ट में आपने पढ़ा। तो हसाबा का मतलब क्या होता है? गिनती करना और इसका हिसाब करना, उसमें नज्म व ज़ब्त रखना कि उसमें गलती ना हो। लेकिन आसा क्या होता है कि शुमार करना और इसकी भी कुदरत रखना कि पूरा रिकॉर्ड भी आप रख रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। गोया कि ये बेस्ट वे है आसा। तो तीनों लफ्ज जो हैं एक तरह से होते वैसे हिसाब ही के लिए इस्तेमाल है। देखिए आज ही के सबक में आपने तीनों लफ्ज पढ़े, हसीबा भी पढ़ा, अदद भी पढ़ा और आसा भी पढ़ा। लेकिन आसा सबसे जो है वो हाई दर्जा है गिनती का, ठीक है? फिर आप आगे चलें तो लफ्ज जो है वो जो इस्तेमाल किया गया है लबेसु, लाम बासा, मानी क्या है? ठहरना। फिर है अमादा, नहीं यही इसका रूट वर्ड है, हमजा मीम दाल, मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुद्दत। नानू नकुसु अलैका नबाअहुम, नबा बड़ी खबर को कहते हैं, नून बा हमजा बड़ी खबर। फितियातुन क्या रूटवर्ड है? फातावो, शाबाश फातावो। और बेरब्बिहिम इसका रूटवर्ड क्या है? रा बा बा, रब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रब किसे कहते हैं? पालनहार, परवरदिगार। जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला, एक हकीर से नुतफे से एक जीता जागता इंसान पैदा करने वाला रब, पालनहार, और उसके लिए जो भी जरूरियात होती हैं उसको पूरा करने वाला। फिर आप देखिए अगला लफ्ज क्या हमें मिला? जिद ना हूं, तो जिद नाहुम का रूट वर्ड है जा या दाल, और इसके मानी है बढ़ना बढ़ाना। हुदन, हुदन के क्या मानी है? हदायत के रास्ते पे चल पड़ना। और रूट वर्ड क्या है? हा दाल या, हा दाल या। तो हुदन से अगला दर्जा क्या होता है? रोश्त का। तो अब मजा आता है ना, लज्जत मिलती है ना। आमतौर पे आप तर्जमा पढ़ती हैं तो दोनों जगह ही हदायत लिखा होता है ना, लेकिन अब आपको जो इसकी बारीकी और जो लताफत और जो दिल को ठंडक मिलेगी हदायत और रुश्त के फर्क को जानकर, सब सोचें कि ईमान हमारा फिर खुद ब खुद जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए जरूरत है कि इसको अच्छे से आप समझते चले जाएं, और घबराने की जरूरत नहीं है कि लो भाई अब इसमें और ज्यादा इतनी तफसील बताते हैं तो हम परेशान होते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है ना, बल्कि ये तो और सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि इतना अच्छा आपको माशाल्लाह समझ जो है वो आता चला जाता है। अगला लफ्ज है जो बहुत अहम है, रबतना, रा बा और तोए। और रब जो है इसके मानी है गिरा लगाना, बांध देना। और आप कहती है ना कि हमें आपस में रब्त रखना चाहिए, राबता मरबूत, है ना, राबित, रब्त और जब्त। तो असल में इसके मानी होते हैं बांध देना, गिरा लगाना। और मजबूत कर देना। जब किसी चीज को गिरा लगा दी जाती है तो दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, दो चीजें आपस में मजबूत हो जाती हैं, है ना। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो कुलूब क्या मादा है, काफ लाम्बा, और इसके मानी क्या है, शाबाश, एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाना। तो दिल की हालत ना बदलती रहती है। इसकी फैमिली का कोई लफ्ज बताएं, इनकलाब, इनकलाब इसकी फैमिली का। जब आपको किसी चीज का रूट आ जाएगा ना तो उसकी फैमिली के जितने लफ्ज हैं वो निकालना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा। फिर आप आ जाइए आयत नंबर 14 के मिडल में ही, नद उआ दाल एन वो बुलाना, इसकी फैमिली का बताएं, दावत, शाबाश। आप दावत करते भी खूब हैं और दावत खाते भी खूब है, हाँ। तो और इसकी दाई, दावत देने वाला, है ना, दावा का लफ्ज भी आप बोलती रहती हैं। तो बुलाना, पुकारना, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसका रूट वर्ड जो है वो आप सबको याद हो गया, क्या रूट वर्ड है इसका, दाल एन वो, दुआ पुकारना, दुआ देना, बुलाना। फिर है शता का, शाबाशीन, तोए तोए, हद से बढ़ना, मुबालगे में ज्यादती करना। अब आप देखें कि पहले ही कोई शख्स मुबालगा कर रहा है ना, वो ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, लेकिन मुबालगे में ज्यादती करना और इसका मतलब है कि आगे बढ़ रहा है, गोया कि झूठ झूठ बोलना और उसमें गुलू करना। और शताता वो बात होती है जो हक से दूर हो, अफरात, हद से ज्यादा दूर हो जाना। और इस्लाम तो ये होता है ना, हदों के अंदर इंसान रहता है। आलेहा तन का वाहिद बता दीजिए, इला, शाबाश, हाँ, इला, सुल्तान, सीन लाम तोए नून, और क्या मानी है इसके, हाँ, जोर, गलबा, दलील, इसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसके बाद है ये आयत नंबर आप 16 यानी 16 पे आ जाइए, व इज़ तज़ल्तुमूहुम, हाँ, आपको ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है, क्या रूट वर्ड है, शाबाश, ऐन ज़ालम। जिन्होंने आज इसका रूट वर्ड निकाला मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत अच्छी बात है, ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, है ना। तो ऐन ज़ालम का मतलब होता है अलग हो जाना, किनारा कर लेना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक दफा सवाल भी पूछा था कि जब हम अपनी, मतलब जिसका मफहूम मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम करते हैं तो ऐन उस वक्त हम अजल कर लेते हैं, हम साइड पे हो जाते हैं, तो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। तो क्या ये सही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ना तो ये कहा ये सही है ना ये कहा ये गलत है, बस खामोश रहे और कहा कि तुम अगर अजल कर भी लो तो जो जान अल्लाह ने लिखी है ना वो आकर रहेगी, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता। तो मैंने आपको ये वाक्या क्यों सुनाया, ताकि आपको अजल ऐन ज़ालम याद रहे। लेकिन अलिफ ज़ालम वो भी है ना, अजल उसके मानी क्या है, हमेशा से, अजल से अब तक, यानी स्टार्ट से एंड तक। लेकिन ये ऐन के साथ जो है वो आपको याद रहेगा, किनारा कर लेना, हाँ, उजलत नशीनी, जो किनारे पे जाकर जो है वो बैठ जाते हैं, अलग होके बैठ जाते हैं सोसाइटी दुनिया को छोड़कर, हो जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा फिर बताइए, इल्लल्लाह फाबू, फाबू का बताएं रूट वर्ड क्या है, हमजा वो या, अभी आपका गुजरा है ना, आवा, मावा, सावी, तो जो आप पढ़ जाएं फिर पढ़ लें और थोड़ा बहुत फर्क हो तो आपको भूलना तो नहीं चाहिए ना। आपको एक तरह का खाना बनाना जब आ जाता है ना तो फिर आपको रेसिपी याद हो जाती है कि शुरू में प्याज लहसुन अदरक डाल के बस कुछ भी डाल दे, हर सब्जी चलती जाती है ना। तो आपको भी ये चीजें भूल नहीं जानी चाहिए। यंशुर क्या रूट वर्ड है, नून शीन रा, नशर से है। तो नशर के मानी क्या होते हैं, फैला देना, नशरो शात, नशर का मतलब होता है फैला देना, और हशर का मतलब क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना, किसी को हांक कर जमा करना। तो यनशुर, ताकि वो फैला दे। फिर दोबारा आ गया वायु हई, हाँ या हमजा, हाँ या हमजा, और मुहैया करना, फराहम करना, तैयार कर देना। फिर है मिरफका, राफा क्वाफ, शाबाश। राफा क्वाफ तो मादा है, इसके मानी होते हैं सख्ती से पाक होना, और किसी से बहम मुआफकत होती है ना किसी की, और कुर्ब होता है, तो उसके लिए रिफ का लफ्ज आता है। तो रफीक भी इसी से है। रफीक कौन होता है? जो किसी से कुर्ब रखता है, उसके लिए राहत का जरिया बनता है, और उसे मोहब्बत देता है ना। तो इसी लिहाज से ये जो कोहनी है ना, कोहनी को क्या कहते हैं? मिरफक। ये मैं पहले सुना चुकी हूँ आपको। हाँ, शाबाश। वमसहू बेवजूहकुम इलल मराफिक, और मसा कर लिया करो, हाँ बेईदी को मिलल मराफिक। वजूह कहेंगे तो वो चेहरा आ जाता है ना, बेईदी को मिलल मराफिक, तो हाथ से लेकर कोहनी तक जो है वो मसा कर सकते हैं। और मिरफिक जो है वो क्या है? कोहनी को कहते हैं। अच्छा, फिर आपस में इसमें निस्बत क्या हुई? एक तरफ रफीक है और एक तरफ कोहनी है। असल में बात ये है कि जैसे दोस्त के साथ जो रफीक होता है, एक बात करते हैं, उसके करीब जाते हैं, कुछ दिल की कही तो होता यह है कि एक राहत और ठंडक मिलती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो कोहनी होती है ना, इसलिए भी आप यूं हाथ टेक कर जब बैठते हैं तो एक राहत और ठंडक महसूस करते हैं। तो निस्बत क्या है? रफीक के साथ भी एक ठंडक और सुकून आप पाते हैं। आप देखिए, आप कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जो आपकी रफीक है, रफीका है, जो दोस्त है, अन कहीं भी वो समझ आता है आपके चेहरे, आपकी आंखें, आपसे, आपके साथ जो कुर्बत, मोहब्बत और राहत और मुआफ़कत का ताल्लुक होता है, तो वो आपकी सब बात समझ आता है। तो रफीक कौन है? वो शख्स जो राहत और मुआफ़कत का जो है वो सबब बने, जो कुर्बत का सबब हो, जिसमें सख्ती नहीं है, मोहब्बत है। और इसी तरह मिर्फक कोहनी को कहते हैं कि इससे टेक लगाता है तो इंसान आराम, राहत, ठंडक महसूस करता है। आप देखें, बहुत कम ऐसे औकात होते हैं कि आप यूं करके बैठी हुई सुकून से जो है वो सोच रही हूँ, भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना। इसी तरह मिर्फका छोटे तकिए को भी कहते हैं, छोटा सा तकिया होता है ना, उसको मिर्फका कहते हैं। और उसमें आप क्या करते हैं कि आप जो हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक वो छोटा तकिया अपने आगे पीछे आप रख लेते हैं ना। और जैसे एक मैंने हार्ट पेशेंट देखा, उनका जब ऑपरेशन हुआ, डिफेब्रिलेटर भी लगा हुआ था, और वो जो था उनको वो जो दिया गया था, जब CPR दिया गया तो कुछ पसलियां जो थी वो डैमेज हो चुकी थी, तो अब वो खांस भी नहीं सकते थे ना। खांसी लेते थे तो बहुत शदीद तकलीफ के पसलियां जो है दर्द करती थी। तो उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने, ट्रिलियन वालों ने एक बड़ा छोटा सा, बड़ा मुनासिब किस्म का एक तकिया उनको दिया हुआ था, और कहा था कि जब तुम खांसने लगो या जब भी तुम्हें जरूरत, तो उसको अपने ऐसे ले लो। जब उसको लेते थे तो उससे वो आराम महसूस करते थे, वो छोटा सा तकिया, तो यानी बहुत जोर नहीं लगता था, गो के तकलीफ तो होती थी खांसते वक्त। तो बहरहाल मैं उससे ये बात भी अब सोच रही थी कि मिरफका छोटे तकिए को कहते हैं। एक तो आम तकिया होता है ना, लेकिन मिरफका छोटा तकिया। इसी तरह जो है वो मरतफक, ऐसी जगह को कहते हैं जहां आराम भी मयसर हो और कोई खलल अंदाज ना हो। मरतफक, आप चाहते हैं ना कभी कोई लम्हे ऐसे हों, कोई गोशे ऐसे हों जिसमें कोई खलल अंदाज ना हो। आप बहुत अहम जरूरी बात कर रहे होते हैं, ये बहुत ही आप सुकून की हालत में होते हैं, और अब तो लोग आराम के लिए वहां जाना चाहते हैं जब फिर वो सेल भी नहीं उठाते, और वहां जाना चाहते हैं जहां फोन ही ना हो, है ना, कोई कोई उससे रابطہ ना कर सके। आपको भी इस बात का अंदाजा होगा।
मुझे
हाँ
अंदाजा है,
हाँ,
फोन के मसाइल का।
हाँ, तो बहरहाल मर्तफक ऐसी जगह जहां आराम भी मुयस्सर हो और कोई चीज जो है वो उसके अंदर खलल अंदाज ना हो। आगे चलते हैं। बहरहाल आप जो है वो इतनी ज्यादा जो इसकी मैंने तशरीह की तो उसका मकसद क्या था कि मिरफका जो है वो अच्छी तरह याद हो जाए। और मिरफका आखिर क्यों ना याद हो जब आप उसको याद करना चाहेंगी, तो मिरफका यहाँ पे आसानी के मानी में है कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे लिए इस काम को जो है वो आसान कर देगा। फिर आगे चलें तो लफ्ज मिलता है तलात, तोए लाम आइन, और मानी क्या है इसके? हाँ, निकलना। शाबाश। जैसे तलात का मतलब होता है वो धूप निकली, वो सूरज निकला से मुराद क्या है? फिर वो धूप निकली तो तुलू होना। तला अल बद्रु अलैना क्या मतलब है? कि चांद हम पर निकला, चांद की रोशनी हम पर जो है वो तुलू हुई। फिर इसके बाद आप देखिए तो आगे लफ्ज है तजावरु, इसका रूटवर्ड है जावोरा। आप देखें कि आपने वो को पहले क्यों किया, जा तो नजर ही आ रहा है तो जा को वहीं पे क्यों नहीं रहने दिया? जावोरा। और इसके मानी है जियारत नहीं करते जैसे देखना, जियारत करना। और अब आप देखिए कि अन जब इस्तेमाल होता है ना तो वो जियारत ना करना है ना, तो यहाँ पे इसके मानी है बच के निकल जाना, कतरा जाना। वैसा तलत, और जब सूरज तुलू होता तजावरू बच कर निकल जाता, अन काफिम उस खो से उस गार से। तो आपको पता है ना जा जू जी वाला वाले वाली और जाता, वही है जातल यमीन दाएं हाथ वाले। यमीन का रूटवर्ड क्या है? या मीम नून। ईमान का रूटवर्ड क्या है? हमजा मीम नून। अच्छा, गराबत गैन राबा क्या रूटवर्ड है इसका? गराबा का सूरज का छुप जाना, अंधेरे का फैल जाना। इसकी फैमिली का कोई लफ्ज बताएं? गुराब। शाबाश। ये आपने जब हाबील और काबील का वाकया पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया था कि कव्वे को गुराब क्यों कहते हैं, वो भी काला स्याह होता है इसलिए उसको गुराब कहते हैं। तो गुरूब जब स्याही फैलनी शुरू होती है। तकरी तो हूं काफ रा द्वाद, और इसके मानी है कतराना, काटना, पता करना। फिर जात शिमाल, शिमाल जो है शीन मीम लाम के लिए आता है, और यहाँ पे इसके मानी क्या है? बाई जानब। जात शिमाल बाई जानब। इसका ऑपोजिट क्या है यहाँ पे? जातल यमीन। गरबा का ऑपोजिट क्या है? तलात। शाबाश। तलात का ऑपोजिट क्या है? गराबत। फजवतिन, फजवतिन जो है इसका रूटवर्ड क्या है? फाजीम वो, दो पहाड़ों के दरमियान खुला मैदान, वादी, वसी मैदान, गार के अंदर की कुशादा जमीन, दो पहाड़ों के दरमियान का शगाफ जो है फजवा, उसके लिए इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए आयत 18 में है ऐकाजन। ऐकाजन जो है या कौफ जोए जागने वाले। हाँ, ऐकाजन जागने वाले, जागना, रुकूद, रा कौफ दाल, रकदा लंबी नींद सोना। मरकत किसे कहते हैं? कब्र को, जहां पे लोग फिर सो जाते हैं। तो रकदा ऐसी नींद को कहते हैं लंबी भी हो, खुशगवार भी हो और हल्की भी लगे। लंबी है लेकिन बड़ी खुशगवार है और हल्की है। अब फिर आगे चले कल्बहुम, किसको कहते हैं? कुत्ते को। तो पीछे कल्ब भी पड़ा है, कहीं कल्ब को कल्ब ना कर दीजिएगा। ये कैफ लामबा है, ये कुत्ते के लिए आता है, ठीक है। और वो काफ लामबा है, दिल के लिए आता है। फिर आगे है बासितुन, बासिन तोए फैलाना, फैली हुई चीज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और जरा आई ही, زال را عین بازو کو کہتے ہیں، ہاتھ کو کہتے ہیں، اصل میں زا را الف پھر عین ذرا کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے آخر تک کا حصہ، اسے کہتے ہیں کونی سے لے کر، یہ کونی ہے نا، کونی سے لے کر یہ درمیانی انگلی جو ہے اس کے درمیان تک کا یہ آخر کارنر جو ہے اس کے لیے ذرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں گز کے لیے بھی آتے ہیں نا لوگ، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ماپتے ہیں. تو بہرحال عموماً اس کا ترجمہ پھر ہاتھ کیا جاتا ہے نا. اور پھر لفظ ہے آگے وسید، ہاں وو سواد دال، اور اس کے معنی کیا ہے؟ چوکھٹ دہلیز کے لیے وسادا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے آپ آگے چلیے، یہ تو آپ کو آتے مطلب ملیتا میم لام حمزہ بھرا ہوا ہونا، سرداروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے برتن کا بھر جانا ہے نا. یہ آیت 18 کے آخر میں آ رہا ہے نا ولا ملے تمین ہوں روبا. آگے چلیے اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 20 میں یرجموکم رجم کرنا، راج مین پتھر مارنا. پھر ہے آیت 21 میں 21 میں آسرنا، عین سواد را ظاہر کرنا آگاہ ہونا، عین سارا عین سارا اور اسارا ظاہر کرنا آگاہ ہونا. پھر اس کے بعد ہے از یتنازعون نون زا عین کھینچ کر نکالنا، اور اسی سے جیسے جب کسی چیز کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو زور لگاتے ہیں، نزا کے لیے بھی آتا ہے، ون نازیات کے لیے بھی آتا ہے، اور تنازع تنازع جھگڑے کے لیے بھی آتا ہے کہ آپس میں جھگڑنا، متنازع بات آپ کہتی ہیں نا. آگے ہے فقالبنو بانون یا بنانا، اور بنا چھت کو کہتے ہیں، بنیان کسے کہتے ہیں؟ عمارت کو کہتے ہیں. تو فقالبنو لبنو کا اور بنیان دونوں کا روپٹ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ بانون یا. پھر آپ دیکھیں یہ گنتی بہت سی آئی ہوئی ہے، آپ نے یہ سب یاد کرنی ہے، ثلاثہ رابعہ خمسہ سادس ہے نا سبا ثمانیہ، یہ سب گنتی یاد کرنی ہے. اور آئی 22 میں ہے تمہاری اور میرا ان، یہ سیم ہے. اور میم رایا شک و شبہ، ایسی بات میں جھگڑا جس کے تسلیم کرنے میں شک ہو. پھر آئی 22 کے آخر میں ہے تستفتی سات آ وو تعبیر بتلانا یا پوچھنا، فتویٰ نہیں لینا، یہ اسی سے ہے، یا پہلے پڑھ چکی ہیں سورت یوسف میں. پھر آپ دیکھیں غدن کل کے لیے غین دال وو، شاباش غین دال وو کل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو آنے والا کل ہوتا ہے، جو گزر جاتا ہے اس کے لیے امس شاباش. پھر اس کے بعد ہے آخری آیت، اور پھر اس میں لبسا ہے ٹھہرنا، اور آخری لفظ ہے احد اکیلا یا ایک کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے.